नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर 3 समझौते ज्ञापन हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत मालदीव के साथ क्षेत्र के फायदे के लिए संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को कोर बैंकिंग, जमा और उधार निधि जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। ब्राजील के साओ पाउलो में एक विमान दुर्घटना में सभी 61 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के 30 जुलाई को हुए भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र चूरामाला पहुंच गए हैं। वे वायनाड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। सेना ने चूरामाला में इरुवानी पूजा नदी पर एक 190 फुट लंबे बैली पुल का निर्माण किया है। इस पुल के बनने से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपकरणों को ले जाने और सैन्य कर्मियों के पहुंचने में मदद मिली थी। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में जुटे सैन्य कर्मियों से बातचीत भी की। श्री मोदी के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित पुनचिरी वट्टम, मुडकई और अट्टामाला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रेड कॉलर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जोस रोमोस हार्तो ने दिल्ली में राष्ट्रपति पैलेस में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग पर 3 समझौते ज्ञापन किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव तथा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति वचनबद्ध है। डॉ जयशंकर 3 दिन के मालदीव दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू से भेंट के बाद यह बात कही। डॉ जयशंकर ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमुन से भी मुलाकात की। उन्होंने इसके बाद रक्षा और सुरक्षा संबंधित सहयोग, समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त पहलों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा हितों के बारे में चर्चा की। विदेश मंत्री ने आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री, वित्त मंत्री और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर से भी भेंट की। डॉ जयशंकर ने मालदीव के 28 द्वीपों में जल और स्वच्छता संबंधित परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा और उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकिंग नियम संशोधन ला रही है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि संशोधन में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुनर्गठन संशोधन शामिल है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रावधानों की शुरुआत एक ग्राहक अनुकूल कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों के पास व्यक्तियों को नामांकित करने का विकल्प है और नामांकित व्यक्ति आसानी से अपने उचित अधिकारों का दावा कर सकता है। इस अवसर पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि जमा और उधारी पर ब्याज दर विनियमित होते रहते हैं। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने की भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बताया कि इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 1 करोड़ शहरी निर्धनों और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता शहरी क्षेत्र में 5 वर्षों के दौरान किफायती आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की हाल के व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। ये परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेगी। देश में रक्षा निर्यात में वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 78% वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के रक्षा निर्यात में 6,915 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3,835 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। रक्षा प्रवक्ता ए भरत भूषण बाबू ने कहा कि इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव यादव ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए आज नई दिल्ली में दवाई पिलाने की द्विभाषीय राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के काटने से बचाव और फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन जैसे निवारक उपाय महत्वपूर्ण है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग इससे प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि इस रोग का असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि इससे व्यक्ति विकलांग हो जाता है। ब्राजील के साओ पाउलो में एक विमान दुर्घटना में 61 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 57 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य में से कोई जीवित नहीं बचा है। यह विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिससे एक मकान को नुकसान पहुंचा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में आज कठुआ जिले के पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादियों के बारे में सूचना देने पर 5 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। आतंकवादियों की सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह सहित सभी खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि देश के लिए पदक हासिल करके वह गौरवान्वित है। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम का आज अभिनंदन किया। उन्होंने टीम के समर्पण और कठोर परिश्रम की सराहना की। विश्व शेर दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों के संरक्षण में शामिल सभी लोगों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात के गिर में शेरों की बड़ी आबादी है और पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देशभर में हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है और 15 अगस्त तक चलेगा। सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे घर पर तिरंगा फहराए और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इस दौरान देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। यह अभियान वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। मौसम विभाग ने कल तक देश के उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज हिमाचल प्रदेश और कल तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।